हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अब तो झलक अपनी लार निकलने लगी थी और चापलूसी करते हुए बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं मिस्टर खुराना, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। तब सिद्धार्थ उसकी ओर गहरी नज़रों से देख कर बोला, अच्छा, क्यों अब तुम पीछे हट रही हो? हाँ, और उस दिन खुराना विला में जब तुम मेरे बच्चे के साथ गर्भवती होने की और मुझसे शादी करने की बात कर रही थी, तब तो तुम मेरी दादी का साथ पाकर मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी। अब सिद्धार्थ खुराना की बात सुनकर झलक ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और उसे याद आया कि आकांक्षा को जेलस फील कराने, आकांक्षा को चिढ़ाने के चक्कर में वो सिद्धार्थ खुराना को नाराज कर बैठी थी और वो सारी बातें बोल चुकी थी, जिसकी वजह से शायद सिद्धार्थ खुराना अब उसे माफ नहीं करने वाला था। अब झलक का चेहरा एकदम से ही पीला पड़ गया था और वो समझ चुकी थी कि न जाने अब सिद्धार्थ खुराना उसे क्या सज़ा देगा, और इस चक्कर में वो दो कदम पीछे हटने लगी थी। उसे ज़ोरों से खांसी आना शुरू हो गई थी और बेकाबू होकर एकदम पीछे हटकर खड़ी हो गई और वो मिस्टर खुराना की तरफ देखकर बोलती है, देखिए मिस्टर खुराना, मैं उस दिन सिर्फ और सिर्फ मज़ाक कर रही थी, मैं सिर्फ मज़ाक कर रही थी। ऐसा कहते हुए पीछे हटती रही, लेकिन तभी मिस्टर खुराना ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। उस वक्त सिद्धार्थ खुराना झलक के बेहद करीब था और वो झलक की गहरी आंखों में ही देख रहा था, लेकिन झलक का अब बुरा हाल हो चुका था। सिद्धार्थ खुराना झलक की गहरी आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुबारक हो, मेरी तुमसे शादी होगी। अब जैसे ही सिद्धार्थ खुराना ने कुछ अलग से अंदाज में झलक को शादी की मुबारकबाद दी, अब तो झलक का चेहरा पूरा ठंडा पड़ गया था। उसे ऐसा लगा मानो कि उसके शरीर से रूह ही निकल गई हो। वो उस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसने एक बार फिर कहने की कोशिश करती हैं, देखिए मिस्टर खुराना, वो सिर्फ एक मजाक था। झलक सिद्धार्थ खुराना को ये भी नहीं बता सकती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन आकांक्षा को चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल रही थी, क्योंकि अगर वो उसे ऐसा बताती तो फिर उसे सारे राज पर से पर्दा हटाना पड़ता। तब झलक एक गहरी लंबी सांस लेकर मिस्टर खुराना की ओर देख कर बोली, प्लीज़, वो एक मजाक था, आप उसे बिल्कुल भी सीरियस मत ले। ये सब बोलते हुए झलक की जुबान लड़खड़ा रही थी, क्योंकि उस वक्त सिद्धार्थ का चेहरा बड़ा ही डरावना लग रहा था। तब मिस्टर सिद्धार्थ बोला, अब तुम्हें ज्यादा कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। अब उसे वक्त झलक को तो ऐसा लग रहा था कि उसकी अभी और इसी वक्त जान चली जाएगी। उस वक्त उसकी सांसें भारी हो रही थी, उसे सिद्धार्थ से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तब मिस्टर खुराना ने अपनी एक आईब्रो उठाई और झलक को घूरते हुए बोला, यदि तुम वाकई ये साबित करना चाहती हो कि तुमने खुराना हाउस में जो कुछ कहा वो सिर्फ एक मजाक था, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। अब तो झलक का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और वो जो उसने एक बार और कहने की कोशिश करती हैं और बोलती है, मैं ये बात साबित कर सकती हूँ, लेकिन तब तक जल्दी ही सिद्धार्थ उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो कि आंखों ही आंखों में सिद्धार्थ झलक की जान ले लेगा। तभी अचानक वो उसके पास गया, उसके कान के पास झुका, उसकी गर्म सांसें झलक की गर्दन पर गुदगुदी करने लगी थी, जिससे झलक की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई थी। तब कुछ सेकंड तक अपनी गर्म सांसें झलक की नाक कान के पास छोड़ने के बाद मिस्टर सिद्धार्थ बड़े ही कोल्ड वॉइस में बोला, इस समस्या का मेरे पास एक समाधान है। अब जैसे ही झलक ने ये सुना, उसका चेहरा एकदम से ही हल्का फुल्का हो गया था। उसे लगने लगा था कि चलो, सिद्धार्थ खुराना ने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया, वरना वो बेकार में ही परेशान हो रही थी। तब झलक खुद को थोड़ा सा कंसोल करके सिद्धार्थ की ओर देखकर बोली, अच्छा, क्या रास्ता है आपके पास, बताइए मुझे। हालांकि झलक को उस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, और तभी मिस्टर खुराना तिरछी सी मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखता हुआ बोला कि मुझे तुम्हारा यूट्रस कटवाना होगा, यानी कि गर्भाशय। अब झलक ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई थी और उसने एक बार अपने कानों को अच्छे से मसलते हुए एक बार फिर मिस्टर सिद्धार्थ खुराना की ओर देखकर कहा, आपने शायद कुछ गलत बोला है या मैंने गलत सुना है, एक बार फिर बोलिए आपने क्या बोला है। तब सिद्धार्थ उसकी तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराया और एरोगेंट वॉइस में बोला, मुझे तुम्हारा यूट्रस यानी गर्भाशय कटवाना होगा। अब तो बर्दाश्त कोई सीमा नहीं थी, ना तो झलक ने गलत सुना था, सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ ने जो बोला था वो गलत था। झलक अब दो कदम पीछे हट गई थी और उसके पीछे जो सोफा था वो उस पर टकरा कर उस पर गिर गई और उसने बड़ी ही अजीब नज़रों से सिद्धार्थ को देखा और फिर गुस्से से चीखते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, नहीं कभी भी नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। उसका गर्भाशय निकल जाने का मतलब था कि वो जीवन भर कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगी। उसने साफ मना कर दिया और वो चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम शैतान हो, क्या तुम्हें फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या तुम इंसान हो या शैतान हो तुम। क्योंकि उस वक्त झलक को एक अनजाना सा डर सताने लगा था, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता था आखिर वास्तव में सिद्धार्थ खुराना कौन था। उसके दोस्तों ने हालांकि उसे बताया भी था कि सिद्धार्थ खुराना एक नंबर का गुंडा और बदमाश है, इतना ही नहीं वो लोगों की खड़े खड़े जान ले लिया करता है और किसी की हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ कुछ भी बोल सके। लेकिन अब सिद्धार्थ खुराना का इतना भयानक रूप देखने के बाद और ये बोलने के बाद कि ये सिद्धार्थ खुराना उसका यूट्रस ही निकलवा देगा, अब तो झलक काफी ज्यादा डर गई थी। उस वक्त वो सिद्धार्थ खुराना से बहुत ज्यादा भयभीत हो गई थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी अपनी क्या हैसियत रख सकता है। उसके लिए झलक को मारना उसके लिए एक चींटी को कुचलना के जितना आसान था। वेल, झलक का चिल्लाना और उसकी सारी बातें सुनकर सिद्धार्थ ने उसे सिर्फ एक नॉर्मल सा लुक दिया था और उसके बाद सीधा अपने फोन से एक नंबर डायल कर दिया और अपने असिस्टेंट देव को बोला कि फटाफट से डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। अब जैसे ही सिद्धार्थ ने झलक के सामने ही अपने असिस्टेंट देव को डॉक्टर को फोन करने के लिए कहा, अब झलक जल्दी से सोफे से उठी और घबरा कर कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी बात खत्म कर पाता, झलक ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए देव का फोन काट दिया था और गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, तुम हो कौन, तुम्हारे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कुछ चाहो वो कर सकते हो। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, साथ साथ उसे गुस्से से कोस भी रही थी, लेकिन सिद्धार्थ पर झलक की किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक नंबर का कमीना और ठंडे खून वाला जानवर था। तब सिद्धार्थ ने उसके हाथ से वापस से फोन छीनते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब तो झलक की सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी, क्योंकि अब सिद्धार्थ बिना और कुछ कहे वहाँ से जाने लगा और तब उसे जाते हुए देखकर झलक ने जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ा और धड़ाम से अपने घुटनों पर गिर गई और चिल्लाकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, सिद्धार्थ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, अगर मैं एक प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मैं अपना अबॉर्शन करवा लूंगी। झलक अपने साथ इस तरह की कोई हरकत नाइंसाफी नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी।
वो इतनी कम उम्र में अगर अपना यूट्रस यानी गर्भाशय खो देती है तो हो सकता है कि फिर उसे जिंदगी भर बिना किसी आदमी के साथ रहना पड़े। झलक जो अभी थोड़ी देर पहले तो क्रोध में चिल्ला रही थी, लेकिन अब घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ा रही थी। तब सिद्धार्थ ने उसकी ठुड्डी को अपने हथेली में पकड़ा और कठोर आवाज में बोला, मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे किस रूप पर विश्वास करना चाहिए। तब झलक लगभग चीखते हुए बोली, तुम्हारी दादी ने तुम्हें ड्रग्स दिए और तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की।